أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے میراث کی گفتگو کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کے ذیل میں چند نقطوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ میراث کو، یعنی میت جو چیز چھوڑ کر جاتی ہے، جو مال، جو دولت، جو پیسہ، جو زمین، جو جائیداد چھوڑ کر جاتی ہے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ اخراجات ہیں جن کو انجام دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے. جن میں سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر جو مال چھوڑ کر گئی ہے اس پر خمس و زکوٰۃ واجب ہے، تو سب سے پہلے خمس و زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر اس مال پر تو خمس واجب نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ خمس کا مقروض ہے. مثال کے طور پر جو ہے خمس واجب تھا اور اس نے خمس نکال بھی دیا تھا، لیکن حاکم شرع سے جو ہے اجازت لے لی تھی کہ اس خمس کو جو ہے وہ فی الحال مجھ پر ادھار کے طور پر رہنے دیجیے، بعد میں آپ کو دے دوں گا. یا جو ہے وہ قسط کے طور پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے خمس کو پر دے رہا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ کچھ قسطیں باقی تھیں. تو ایسی صورت میں خمس و زکوٰۃ کا جو بھی قرض اس کے اوپر پرانے مال کے اوپر جو اس وقت موجود نہیں ہے، جو بانٹا جا رہا ہے اس مال پر نہیں، دوسرے مال پر جو ہے جو خمس تھا یا زکوٰۃ تھی اور اس کا قرضہ بھی باقی ہے، پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ میراث تقسیم کی جائے. اسی طریقے سے جو ہے خمس و زکوٰۃ نہیں، اگر اس نے کسی اور سے بھی جو ہے وہ قرض لیا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی انسان نے کسی سے 10,000 روپے قرض لیے اور اس سے پہلے کہ قرض کو ادا کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے وارث جو ہیں وہ مال کو اپنے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے اس کے قرض کو ادا کریں، اس کے بعد تقسیم کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ جس انسان کا انتقال ہوا ہے، اس کے مال کو وارثوں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے جو ہے وہ میت کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. مثال کے طور پر جو ہے وہ کفن خریدنے کے لیے پیسے، دفن کرنے کے لیے قبر کی جگہ جو خریدی جائے گی، عام طور پر جو ہے جن مقامات پر خریدی جاتی ہے اس کے لیے جو اخراجات ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بیری اور کافور خریدنے کے لیے پیسے، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں، مثال کے طور پر جو ہے مزدوری، غسل دینے والا جو ہے وہ غسل کے علاوہ کچھ اور کام بھی انجام دیتا ہے، اس کی مزدوری، غسل کی مزدوری تو نہیں لے سکتا چونکہ غسل دینا واجب ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے اخراجات جو کفن سے متعلق ہیں ان کو بھی میت کے مال سے نکالنا پڑے گا میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے اور بڑے بیٹے کے حصے میں سے نکلے گا، چھوٹے بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل جو مال چھوڑ کر گیا ہے، جو دولت چھوڑ کر گیا ہے، جو کچھ بھی چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا، وہ اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن اگر مرنے سے پہلے مرنے والا جو ہے وصیت کر دے کہ میرا کفن اور دفن وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ بڑے بیٹے کی یا فلاں بیٹے کے پیسے سے ہونا چاہیے یا کسی اور کے بارے میں وصیت کر دے، تو پھر اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے. دوسرے یہ کہ یا جو ہے وہ مرنے والی جو ہے وہ ایسی عورت ہے کہ جس کا شوہر زندہ ہے، تو پھر اس کے جو عورت اب جو اپنا مال چھوڑ کر جا رہی ہے، اس کے مال اور دولت جو چھوڑ کر جا رہی ہے اس میں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اس کے کفن دفن کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے. البتہ عام طور پر جو ہے وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیوی تو جو بھی کچھ چھوڑ کر چلی جائے اس کا کچھ نہیں ہے، سب شوہر کا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی کی کوئی اپنی چیز ہے، مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ سروس کرتی ہے، تو جو پیسے اس کو ماہانہ تنخواہ کے عنوان سے ملتے ہیں وہ خود اس کی ملکیت ہے. اگر کسی کی بیوی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو وہ خود اس کی ملکیت ہے. بیوی کو اگر باپ کچھ دے دیتا ہے، مثال کے طور پر لڑکی کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد باپ جو ہے کچھ دے دیتا ہے، کوئی زمین دے دیتا ہے یا کچھ پیسے دے دیتا ہے خود بیٹی کے لیے، تو وہ جو ہے اس کی ملکیت ہے، और उसको जो है वो उसे खर्च करने का पूरा पूरा इख्तियार है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो बीवी मर जाती है तो वो सब सिर्फ शोहर का हो जाएगा, नहीं बल्कि उसको जो है वो तकसीम किया जाएगा मीरास के तौर पर। लिहाजा अगर कोई ऐसी औरत मर जाती है जिसका शोहर जिंदा है तो उसकी मीरास को तकसीम करने से पहले उसमें से कफन और दफन के कफन दफन वगैरह के जो हैं वो अखराजात को निकालना ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तमाम अखराजात बीवी के सिलसिले में उसके शोहर पर वाजिब हैं। इसके बाद जो है, अगर मैयत वसीयत कर दे कि मेरे माल के कुछ हिस्से को मस्जिद में, इमाम बारगाह में, यतीमों पर, किसी नेक काम में, किसी स्कूल में, किसी सड़क पर, किसी मेहमान खाने में, किसी भी जगह पर जो है किसी नेक काम में खर्च कर दें, अगर मैयत ने मरने से पहले ये वसीयत की है कि मेरे माल के कुछ हिस्से को खर्च कर दें, तो अगर वो वसीयत जो उसने की है वो माल के 1/30 तीन हिस्से से की है, यानी माल के तीन हिस्से किए जाएं, तो उसने जो वसीयत की है वो सिर्फ एक हिस्से के बारे में की है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है, मैं कम रकम की मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के पास जो है वो 300 रुपये हैं और वो वसीयत कर देता है कि 100 रुपये जो हैं वो मेरी तरफ से मदरसे में खर्च कर दिए जाएं, या वसीयत करता है कि मेरी तरफ से जो है वो एक दो लोटे खरीद कर मस्जिद में दे दिए जाएं, और मस्जिद में जो है उसने वसीयत की है कि दो लोटे खरीद कर दिए जाएं, दो लोटे जो है वो 100 रुपये में आ जाते हैं और वो छोड़ कर गया 300 रुपये। तो ऐसी सूरत में जो है मैयत के जो वारिस हैं उन पर वाजिब है कि उसको जो है मीरास को तकसीम करने से पहले मैयत ने जितनी वसीयत की है उसको निकाल दें, अलबत्ता 1/3। अगर 1/3 से ज़्यादा वसीयत करता है तो ऐसी सूरत में जो है वो जो वारिस हैं मैयत के उन सब का राज़ी होना और सबका इजाज़त देना शर्त है। यानी अगर वो सब के सब इजाज़त दे देते हैं, राज़ी हो जाते हैं कि हाँ उन्होंने जो वसीयत की है उस पर अमल किया जाए और हम राज़ी हैं, तो ऐसी सूरत में जो है उसको मीरास तकसीम करने से पहले निकाला जाए। लेकिन अगर वो लोग राज़ी नहीं हैं तो 1/3 तक निकाल दिया जाए, उसके बाद जो है वो ना निकाला जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो मरने से पहले वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद जो है वो एक वक्त का खाना जो है मदरसे के तुल्लाब को, मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं उनको खिला देना, या जो है वो एक बकरा जो है वो मेरी जानिब से फला जगह पर फला गरीबों में तकसीम कर देना। अब मालूम हुआ कि वो जो हैं मिसाल के तौर पर जो कुछ छोड़ के गए हैं वो 10,000 रुपये हैं, कफन दफन वगैरह के बाद जो हैं उनके 10,000 रुपये बचे हैं जो वो छोड़ कर गए हैं, उसमें से बकरा जो है वो 5,000 का आता है, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3,333 जितना भी 3/3 होगा उसके खर्च करने की इजाज़त है। 5,000 वो वसीयत जो उन्होंने की है 5,000 की, पूरे 5,000 खर्च नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, अगर तमाम वारिस राज़ी हो जाएं और इजाज़त दे दें कि हाँ उन्होंने जो वसीयत की है उसके मुताबिक अमल कर किया जाए और जितना उन्होंने कहा उतना खर्च कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में जो है पहले जो उन्होंने वसीयत की है उसको निकालें, उसके बाद मीरास तकसीम करें। लेकिन अगर राज़ी नहीं होते हैं इसमें जो है वो माल का 1/3 हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर 9,000 छोड़े हैं तो सिर्फ 3,000 की वसीयत जो है उस पर अमल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा पर बग़ैर वारिसों की इजाज़त के अमल नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है वो मीरास को तकसीम करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बड़े बेटे के लिए निकाल देना ज़रूरी है, यानी उनमें जो है वो छोटे अगर उसके यहाँ बेटे हैं, बड़े से छोटे बेटों का कोई हिस्सा नहीं है, लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं है, बीवी का कोई हिस्सा नहीं है, माँ बाप का कोई हिस्सा नहीं है उसमें, बल्कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बेटे के लिए है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? वो कुरान है, बाप का एक मखसूस कुरान है जो बाप पढ़ता है, बाप ने ख़रीदा है, तो वो कुरान जो है बाप के बाद बड़े बेटे को मिलेगा। इसी तरीके से बाप की अंगूठी जो बाप पहनता है वो भी सिर्फ बड़े बेटे के लिए है, वो दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों का हिस्सा उसमें नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से जो बाप के लिबास हैं, बाप के कपड़े हैं, वो भी जो है बड़े बेटे का हक है और दूसरे लोगों का उसमें किसी तरीके से कोई हिस्सा नहीं पाया जाता है। इन तमाम चीज़ों को निकालने के बाद यानी खुम्स ज़कात, खुम्स ज़कात का कर्ज, किसी और का कर्ज, इसी तरीके से कफन और दफन के अखराजात, और इसी तरीके से जो मैयत ने जो वसीयत की है कार खैर में उसका पैसा लगाने की, वो और जो बड़े बेटे को दिया जाता है वो, ये तमाम चीज़ें निकालने के बाद अब जो बचता है उसको जो है कानून के मुताबिक, अहकाम के मुताबिक वारिसों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो वारिस कौन लोग हैं, वारिसों के जो है वो तीन हिस्से हैं, तीन गिरोह हैं, तीन ग्रुप हैं कि जिनको जो है वो मरने के किसी के मरने के बाद जो उसने माल छोड़ा है वो मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ग्रुप को मिलते हैं, बल्कि अगर पहला ग्रुप है मौजूद है तो दूसरे और तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर पहला ग्रुप नहीं है तो दूसरे ग्रुप को मिलेगा, लेकिन अगर दूसरा ग्रुप है तो तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर पहला और दूसरा ग्रुप नहीं है तब जो है वो तीसरे ग्रुप की नौबत आती है। यहाँ तक कि अगर पहले ग्रुप में एक आदमी भी है तब भी जो है वो दूसरे ग्रुप को और तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर दूसरे ग्रुप में एक आदमी भी है तो तीसरे ग्रुप को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब सबसे पहला जो ग्रुप है वो है माँ बाप और बच्चे, यानी अगर कोई इंसान मर जाता है तो सबसे पहले जो उसकी मीरास मिलेगी वो उसके माँ बाप को मिलेगी और उसके बच्चों को, और बच्चों में जो है वो पोते पोतियाँ भी शामिल हैं। लिहाजा अगर मरने किसी के मरने के बाद उसके माँ बाप या उसके बच्चे, उसके माँ बाप और बच्चे, या जो है वो सिर्फ बच्चे या सिर्फ माँ बाप मौजूद हैं तो फिर उसकी जो मीरास है, जो माल वो छोड़कर जा रहा है वो किसी और को नहीं मिलेगा बल्कि इन्हीं को दिया जाएगा, चाहे एक ही आदमी इनमें से मौजूद हो, अगर एक है तो सारा माल एक ही को दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मरने के बाद सिर्फ बाप मौजूद है, ना माँ है ना औलाद है, तो सिर्फ जो है वो किसको दिया जाएगा, सिर्फ बाप को दे दिया जाएगा सारा, ये नहीं कि बाद वाले तबके को दिया जाएगा। दूसरा तबका कौन है, दूसरा तबका जो है वो दादा और दादी और इसी तरीके से भाई और बहन, यानी अगर कोई इंसान मरता है और उसका ना बाप है ना माँ है ना बच्चे हैं तो फिर उसका माल जो है वो तकसीम किया जाएगा दादा दादी और भाई और बहन के दरमियान, और जब तक दादा दादी या भाई बहन में से कोई एक भी अगर मौजूद है तब तक जो है वो तीसरे ग्रुप तक उसका विरसा नहीं पहुँचेगा। तीसरा ग्रुप कौन है, तीसरे ग्रुप में जो है वो चचा हैं, फूफी हैं, मामू हैं और खाला हैं, लेकिन तीसरे ग्रुप की नौबत उस वक्त आएगी जब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप मौजूद ना हो, यहाँ तक कि एक भी आदमी इनमें से मौजूद ना हो तो फिर जो है वो मीरास को चचा और फूफी और मामू और खाला के दरमियान जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक नुक्ते की तरफ इशारा कर दें और वो ये कि हमने तीन ग्रुप बताए हैं, पहले ग्रुप में जो है माँ बाप और औलाद, दूसरे ग्रुप में दादा दादी और भाई बहन, तीसरे ग्रुप में जो है वो चचा फूफी और मामू और खाला, ये लोग हैं। यहाँ पर जो है वो मियाँ बीवी का जिक्र नहीं है, मियाँ बीवी का जो है वो अलग मसला है, और वो मसला ये है कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के विरसे को पाते हैं, यानी अगर मियाँ मर जाता है यानी शोहर मर जाता है तो बीवी को उसका विरसा मिलता है, बीवी मिल जब मर जाती है तो शोहर को उसका विरसा मिलता है, चाहे जो है कोई भी ग्रुप मौजूद हो, यानी अगर जो है वो पहला ग्रुप मौजूद है तब भी मिलेगा बीवी को शोहर का विरसा, शोहर को बीवी का विरसा, अगर दूसरा ग्रुप मौजूद है, पहला नहीं है दूसरा मौजूद है तब भी जो है मियाँ को बीवी का, बीवी को मियाँ का, और अगर दूसरा ग्रुप मौजूद नहीं है तीसरा ग्रुप है तब भी जो है वो शोहर को बीवी का, बीवी को शोहर का विरसा मिलेगा, यानी मियाँ बीवी अगर दोनों में से एक मर जाता है और माल को छोड़कर, माल दौलत छोड़कर जाता है तो उसके वारिसों के जो तीन तबके हैं ان میں سے چاہے تینوں کے تینوں طبقے موجود ہوں، یا پہلا موجود نہ ہو دوسرا ہو، دوسرا موجود نہ ہو تیسرا ہو، ہر صورت میں جو ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ورثہ ملے گا. اگر میاں مر جاتا ہے تو بیوی کو اس کا ورثہ، اور بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کو اس کا ورثہ ہر صورت میں ملنا ہے. نہ یہ کسی گروپ میں شامل ہیں اور نہ ہی کسی گروپ سے جدا ہیں، گویا ہر صورت میں حاضر ہیں ایک دوسرے کا ورثہ لینے کے لیے. دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور باقی گفتگو اور مسائل میراث کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.